ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हमारे पास कॉर्डलेस माइक है ललित प्रभु, कॉर्डलेस माइक, डिवोटीज कैन रीड दैट आल्सो, अच्छा रहेगा।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधीयुधाच्छ्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता के बारे में बताया था, आप लोग थोड़ा आगे आ सकते, और अर्जुन को बोला था कि अपने कर्तव्य पालन में आप शोक मत करिए, घबराइए मत। तो यहां पे थीम थोड़ा चेंज हो रहा है, और थीम यहां से लेकर के जहां तक मैं समझता हूं 1, 2, 3, 5, 36, 37, 38, 38 तक ये चर्चा होगी कि आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होगा। इस आर्ग्यूमेंट को भगवान बता रहे हैं। अगर आपको याद हो, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध क्यों करूं, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं पाप को प्राप्त होऊंगा, और जिन लोगों को मारूंगा वो लोग मर जाएंगे, तो मुझे सुख कैसे प्राप्ति होगी। तो भौतिक सुख नहीं प्राप्त होगा, ये आर्ग्यूमेंट भी अर्जुन दे रहे थे युद्ध ना करने के लिए। तो यहां के इन श्लोकों में 31 से लेकर 38 तक भगवान बताएंगे उसी आर्ग्यूमेंट को। वो इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है आर्सनिंग द आर्ग्यूमेंट, मतलब जलाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है आर्ग्यूमेंट को, भगवान दूसरे तरीके से बता रहे हैं इसको, और उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हम समझ सकते हैं, अर्जुन को ये डिसाइड नहीं करना था कि अधर्म और धर्म में क्या चूज करना है। उनके सामने ये दिक्कत थी, इसे कहते हैं धर्म संकट, कि ये भी धर्म है और ये भी धर्म है, मैं क्या कहूं। क्षत्रिय होने के नाते में उनका धर्म क्या था, युद्ध करना, और क्षत्रिय होने या कह सकते हैं आर्य पुत्र होने के नाते ये भी कर्तव्य था कि अपने गुरुजनों का सम्मान करना। तो उनके लिए अधर्म धर्म के बीच में चॉइस नहीं था, वो धर्म ही में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इससे मैं क्या करूं, ये उनके सामने था। और भक्त होने के नाते जब हम भक्त होते हैं तो स्वभावतः हम धर्म के बारे में सोचते हैं, है ना, कि ये कार्य मैं कर रहा हूं तो शास्त्र के अनुसार है या नहीं, क्या ये धर्म है या नहीं। तो इसमें भक्तों को संकट होता है, भक्तों को ये संकट नहीं होता कि मांस खाएं कि दाल चावल खाएं, ये कोई नहीं रहता है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब ये सब कभी कोई प्रश्न करता है प्रभु जी कैसे मैं डिसाइड करूं कि मांस खाना है कि वेजिटेरियनिज्म खाना है, इट्स अ वर्क। भक्तों के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं है, भक्तों के लिए चीज है, या कह सकते हैं संकट नहीं है, संकट ही रहता है कि इस समय मैं क्या करूं, श्रवण करूं कि जप करूं कि क्लास में आऊं कि कीर्तन करूं, कि ये भी धर्म संकट सब बना ही रहता है, कौन सा धर्म मुझे पालन करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी रंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। आज भी का पता नहीं, मतलब आज तो नहीं करते, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने लिखा होगा तात्पर्य तो शायद करते होंगे, उस टाइम शायद करते होंगे। हाँ, एक माइक और होना चाहिए, दूसरा कॉर्ड वाला माइक है अपने पास, कॉर्ड वाला माइक भी नहीं, भक्त लोग कुछ कमेंट करते तो अच्छा रहेगा, रिकॉर्ड हो जाता है, नाइस, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी कहाँ से परमात्मा बोल रहे हैं ना क्या, नाइस। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है।
इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षत्रियों को शांति का मार्ग हमेशा नहीं अपनाने के लिए बोला जाता है। क्षत्रियों के लिए शांति एक राजनीति है, आपने सुना है ना, साम दाम दंड भेद। अगर क्षत्रिय शांत बैठे हैं, शांत बैठे का मतलब शांति का उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वो राजनीति के हिसाब से वो अनुकूल है। जैसे कोई ब्राह्मण अगर शांत हैं तो किस लिए शांत हैं, उनको सहन करना उनका स्वभाव है। किसी ने अपराध कर दिया क्षमा कर दिया, अपराध कर दिया क्षमा कर दिया, यह स्वभाव होता है उनके लिए। क्रोध करना एक दोष है। जैसे कि विश्वामित्र जब ब्रह्मऋषि बनने के लिए तपस्या कर रहे थे तो उन्हें पहले काम से वो अभिभूत हो गए थे मेनका के द्वारा, फिर उसके बाद रंभा आई तो उस पर वो क्रोधित हो गए, तो दोनों ही तरह से उनका पतन हुआ। एक ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा पतन का कारण है, लेकिन क्षत्रिय के लिए काम से अभिभूत होना कोई पतन का कारण नहीं माना जाता। बल्कि कोई क्षत्रिय थे जब वो ब्रह्मऋषि बनना चाहते थे तब उन्होंने ये देखा कि नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में जाने ज्वाइन करने से पहले पिक्चर देखता है, देखते ही है प्राय लोग आजकल ज्वाइन करने से पहले देखते हैं। कोई ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करे बोले और उसे पिक्चर देखते हुए पकड़ा जाए तो बोले प्रभु जी मेरे वो पुराने वाले गुण प्रकट हो गए। पुराने वाले गुण तुम्हारे पुराने आश्रम के अनुसार है। कोई संन्यास ले ले और फिर स्त्री संग करने लगे वो मेरे गृहस्थ वाले गुण प्रकट हो गए, ऐसा नहीं कह सकते हम। जब हम संन्यास लेना चाहते हैं तो फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे सिंपल उदाहरण लीजिए, हम लोग आर्मी में कोई नहीं है तो हम लोग भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है, लेकिन आर्मी के जवानों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ट्रेनिंग लें दौड़ें, और अगर वो नहीं दौड़ते हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है ना। आज हम प्रचार करते हैं लोगों को तो हम बोलते हैं तुम मंगल आरती नहीं आए कैसे भक्त हो, नहीं बोलते आप दो माला कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। लेकिन जब आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं भक्त तो कठोरता थोड़ी की जाती है, उनसे एक्सपेक्टेशन अधिक हो जाती है। इस पे मैं चलिए अब एक्सपेक्टेशन आ ही गया बात तो मैं थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि भगवान क्यों बोल रहे हैं। अब देखिएगा कि जगत में लोग इसे कहते हैं एट्रिब्यूशनल फॉल्ट। लोग किसी व्यक्ति का कुछ कार्य देखते हैं और उसका उद्देश्य नहीं देख पाते। क्या बोला मैंने, हर व्यक्ति के कार्य को देखते हैं उद्देश्य नहीं देख पाते। उद्देश्य आप देखते हैं, कार्य बाहर के लोग देखते हैं, तो प्रायः गलत समझने की संभावना बहुत अधिक होती है, होता है ना। उदाहरण के लिए जब हम थक जाते हैं और हम सोते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम थक गए इसलिए सो गए, और सामने वाला अगर सोता है तो हम क्या बोलते हैं, तो बहुत आलसी है। जब हमें भूख लगती है हम खाते तो हमें लग रहा है भूख लग रही है, दूसरा वाला बहुत खाता है देखो कितना भोगी है, तो उसका उद्देश्य हम नहीं देखते, केवल उसके क्रियाओं को देखते हैं। तो बहुत ही गंभीर बात है। एक भक्त भले ही अपनी मान सम्मान के बारे में उसको कोई अपेक्षा ना हो, लेकिन एक प्रचारक तभी प्रचार कर सकते हैं जब लोगों की उनकी प्रति गुरु बुद्धि हो या आदर बुद्धि हो। तो अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है तो ऐसे कभी कभी प्रचारकों को अपना डिफेंस करना पड़ता है, अपनी स्थिति को समझाना पड़ता है, और ये आवश्यक है उन लोगों के लिए जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप अगर आप समझ सकते हैं किसी वैष्णव के बारे में अगर आप निंदा सुनते हैं, हो सकता है बिल्कुल झूठ भी हो और सच भी हो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर झूठ हो तो हम पकड़ लेते हैं और जब उससे सुनेंगे क्लास तो हर बार वही चलता रहता है, बोल तो ऐसा रहे लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा करते हैं, चाहे वो ऐसा ना करते हो। आप ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं, तो आप ये चीज देखिए कि बहुत बार हम लोग बहुत बार क्या हमेशा किसी के उद्देश्य को कहां समझ पाते हैं, क्रिया को देख करके हम जजमेंट दे देते हैं, नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति है। और भक्तों के समाज में संबंधों को अच्छा रखने के लिए हमें कंफर्म करना चाहिए कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या था वो कार्य करने के लिए। आप लोग इस उदाहरण को चैतन्य लीला से समझ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में आप लोगों को पता है रामानंद राय वाला प्रसंग, रामानंद राय से प्रद्युम्न मिश्र कथा सुनने के लिए गए और पता चला कि वो देवदासियों को स्नान करा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो इनसे कथा सुनेंगे, इनसे तो कथा नहीं सुन सकते। तो उनका उद्देश्य वो और उनकी चेतना को वो नहीं समझ पा रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई वैष्णव कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यों को देख करके हम सीधे कमेंट नहीं करना चाहिए, कर देते हैं बड़ी आसानी से।
तो चैतन्य चरण प्रभु के मैं लेक्चर आज सुन रहा था उस पे, इसी इन्हीं श्लोकों पे वो बता रहे थे और अपना अनुभव बता रहे थे कि एक बार वो प्रसाद पाते समय बहुत लेट हो गया, फीस्ट था, तो बोले ठीक है वो लेट आए हो, जो मिलेगा हम पा लेंगे। तो भक्त बहुत सीनियर डिवोटी थे बगल में बैठे हुए, वो सब खत्म होने का समय था, सब सर्वर से पूछ रहे थे क्या एक स्वीट और है, क्या एक स्वीट और है, और उनको स्वीट मिल चुकी थी और हर बार जा रहे थे, हर बार कोई व्यक्ति आ रहा था, चार पांच लोगों से पूछ लिया स्वीट है स्वीट है स्वीट है। तब हम क्या बोलेंगे, अब क्या जजमेंट देंगे, इतने साल बीत गए स्वीट खाने की आदत नहीं गई है। और यही भाव अन्य भक्तों का आ रहा था और प्रभु जी के मन में भी आया, ये क्यों इतना स्वीट मांग रहे हैं, मिल तो गया एक स्वीट। तो एक व्यक्ति जो सर्वर था उसने देखा सीनियर डिवोटी मांग रहे हैं, तो उसने सर्वर जो प्लेट बना लेते ना उससे स्वीट लेके आया, जो लेके आया तो प्रभु जी ने मेरे लिए नहीं प्रभु जी के लिए चाहिए, इनको प्रसाद नहीं मिला, इनको स्वीट नहीं मिली। तो प्रभु जी एकदम बोले, मैं शॉक हो गया कि मैं कैसे उनके बारे में जजमेंट पास कर दिया कि ये देखो सीनियर डिवोटी हो रहे हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं। और अपने मन को देखिएगा कि हमारा ये स्वभाव है कि हम तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं भले ही बोले नहीं, बहुत जबरदस्त बात है जजमेंट पास कर देना, क्योंकि सम्मान देना नहीं चाहते, इसलिए कुछ ना कुछ उद्देश्य तो गड़बड़ होगा। तो यहां भी भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर अपने आगे जाके भगवान बोलेंगे कि देखो तुम इस धर्म का पालन कर रहे हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारा निश्चित लाभ है, और इसमें क्यों नहीं तुम्हें मतलब पीछे हटना चाहिए, इसके बारे में भगवान और आगे भी आर्ग्यूमेंट देंगे कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी इत्यादि। अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्षत्रिय धर्म की जो हमें समझ में आना चाहिए कि क्षत्रिय साम क्यों नहीं, साम क्यों अप्लाई करते हैं पहले पहल में, क्योंकि युद्ध करने से किसी का लाभ नहीं होता, युद्ध करने से क्षति ही होती है और उससे उबरने में काफी समय लगता है अर्थव्यवस्था को। तो आप देखें जैसे उदाहरण के लिए राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें घोड़ा भेजा जाता था, अगर वो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे तो प्राय सारे लोग बिना युद्ध किए उनके संरक्षण को स्वीकार कर लेते, जबरदस्ती युद्ध नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्षत्रिय लोग युद्ध करने में रुचि नहीं रखते, अगर युद्ध करना पड़े धर्म की रक्षा करने के लिए तब युद्ध करते हैं। जैसे यहां पे उदाहरण है कि जानवरों को मारते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि अब शेरों को काट काट करके या और जानवरों को काट काट के पका पका करके उन्हें होटल खोल लिया, ये अंतर है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? ठीक। आहवेशु मिथोन्योन्यम जिघान संतो महिक्षतः युद्धमानः परम शक्त्या सर्गम यान्त्या परांग मुखा यज्ञेशु पशवो ब्रह्मन् हन्यते सततम द्विजैः संस्कृतः किल मंत्रैः संस्कृतः किल मंत्रैश्च तेपि सर्वम् अवाप्नुवन्। आप शायद संस्कृत देखिए समझ गए होंगे क्या अर्थ है, कि जो क्षत्रिय धर्म के क्षेत्र में युद्ध करता है, धर्म के लिए युद्ध करता है, तो उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान यहां पे आत्मा के बारे में नहीं बता रहे हैं, उन लाभों के बारे में बता रहे हैं जिनके लिए क्षत्रिय और ब्राह्मण कार्य करते हैं सामान्यतः। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आगे श्लोक हैं भगवान आत्मा के कल्याण के बारे में, भगवत धाम जाने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हमारे जब हम लोग जगत में रहते हैं तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, अपराधर्म और परधर्म। अपराधर्म क्या होता है दशरथी प्रभु? अपर धर्म का अर्थ होता है जो हम अपने शरीर के संबंध में हमें कार्य करने ही पड़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। और पर धर्म का अर्थ होता है वो क्रियाएं वो कर्तव्य जिससे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। भक्त लोग अपर धर्म के फ्रेमवर्क में पर धर्म का आचरण करते हैं, समझ में आ रहा है? ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य शूद्र हो सकते हैं, लेकिन इसके फ्रेमवर्क समझते हैं आप, मतलब कैसे समझाया जाए, जैसे ग्लास है तो ग्लास आवश्यक है ताकि दूध को धारण पिया जा सके, एसेंस जो है वो दूध है, लेकिन अब दूध हाथों में तो लेकिन नहीं पिया जा सकता। तो जब इस जगत में भी रहते हैं तो भक्त लोग इस फिट हो जाते हैं इसमें कहीं ना कहीं, जहां उनका स्वभाव होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो परधर्म का आश्रय लेना होता है, और इन दोनों को बैलेंस भी करना आवश्यक, जैसे बहुत बार आपको आप जब भक्ति करने का प्रचार करेंगे, भक्ति के प्रचार का प्रयास करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे हरे कृष्णा ही करें, पिताजी की सेवा ना करें। ऐसा अब बताइए कि क्या पिताजी की सेवा करने में हरे कृष्णा बाधा दे रहा है? तो लोग इसको एक्सट्रीम में लेके जाते हैं कि हरे कृष्णा करने वाला मतलब सीधे बाबा जी बन जाएगा, घर छोड़ देगा। कितने लोगों के संग ऐसा हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि परिवार का ध्यान नहीं रखे, लेकिन ये मुख्य फोकस नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि खाली इसी को फोकस करते रहें और परधर्म का आश्रय छोड़ दें, भक्ति करना छोड़ दें, ये नुकसानदायक हो जाए। समझ में आया? हाँ, यही बता रहे हैं, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर जो स्वधर्म है वो है क्षत्रिय धर्म, अपराधर्म कहा जाएगा। और इसीलिए भगवान यहां पे आत्मा की गति के बारे में नहीं बोले, भागवत धाम जाने के लिए नहीं बोल रहे, आगे जाके बोलेंगे, बोल रहे हैं कि अभी मैंने तुम्हें सिखाया, अब तुम्हें बुद्धि योग सिखा रहा हूं। ये चीज आगे बताएंगे इसी श्लोक में, आगे जाके आएगा, आगे श्लोक में नहीं मिला, आगे जाके चैप्टर में। युद्ध में विरोधी ईर्षालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। ये थोड़ा लाइन समझिएगा। जब कोई यज्ञ में पशु को बलि दी जाती है और वो यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न किया जाता है तो उस पशु को बहुत लाभ होता है। जैसे मान लीजिए एक घोड़े को मारा गया तो घोड़े से तुरंत इंसान नहीं व्यक्ति बनता है, उसके बीच में बहुत सारे चेन्स हैं, बहुत सारे पशुओं की योनियां हैं और हर योनि में जन्म लेना, फिर बुढ़ापे का अनुभव करना, फिर मरना, फिर ऐसे करने की बजाय सीधे उसे मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती और अच्छी योनि प्राप्त होती, इससे आगे प्रगति कर सकता है। तो ये एक बहुत लाभकारी बात है, लेकिन ऐसा हम अब कर नहीं सकते, इसलिए मना किया गया है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है, अब प्रभुपाद यहां पर क्लियर करेंगे। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। समझ में आया आपको? जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है तो उसको वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिए और साथ साथ मुक्त होने का प्रयास भी करना चाहिए। और जब वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो वर्णाश्रम का पालन करे, इसे कहते हैं परमहंस अवस्था। लेकिन परमहंस अवस्था का अनुभव किया जाना चाहिए, उसको इमेजिन नहीं करना चाहिए कि मैं परमहंस हो गया हूं। आपने आगे टाइटल के आगे लगा दे हम लोग तो उसे टाइटल लगा देने से हो नहीं जाएगा, टाइटल केवल टाइटल है। एक्चुअली हम सारे टाइटलों से मुक्त हो जाते हैं जब परमहंस अवस्था में पहुंचते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया गया है। क्या है श्लोक, याद है किसी को? चतुर्विधा भजन्ते चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम। हम सब लोग भूल गए, ब्राह्मण नहीं है हम लोग। ओके। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, ठीक है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। प्रथम सोपान क्यों कहते हैं? अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा व्यक्ति तो केवल पशु जीवन जी रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन करके खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में वही आहार निद्रा भय मैथुन बहुत रेगुलेटेड हो जाता है, सब कुछ विवाह का संस्कार होता है, एवरीथिंग इज लाइक प्रॉपरली रेगुलेटेड, और उसके द्वारा मनुष्य जीवन व्यक्ति जी सकता है और उसके वहां से वो और प्रगति करे तो भगवान की भक्ति कर सकता है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं आप लोग।
वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वर्णाश्रम धर्म में गुण कर्म विभागशः होता है। आपके गुणों की और आपके कर्मों का जो स्वभाव है, जो स्वभाव के अनुसार आप कर्म करना चाहते हो, उसकी अपेक्षा होती है। अपेक्षा मतलब समझते हैं, भाई तुम्हारी क्या योग्यता है, तो भाई मैं शूद्र हूं, तुम ये शूद्र का ही कार्य करो। लेकिन भक्ति में ये अपेक्षा नहीं है। कोई व्यक्ति भी हरे कृष्ण कर सकता है, कोई व्यक्ति भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान को प्रणाम कोई भी कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कोई भी कर सकता है, भगवान के भक्त कोई भी बन सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, परधर्म में, परधर्म मतलब भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि भाई ये होगा तभी वो परधर्म का आश्रय कर पाएगा। क्या बोला मैंने अभी, परधर्म में और अपराधर्म यानी वर्णाश्रम धर्म में क्या अंतर है, अपेक्षा नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कुब्जा कोई बहुत सुंदर नहीं थी, है कि नहीं। ये मालिका जिसने भगवान को माला दिया वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ध्रुव महाराज वो एकदम छोटे थे। और कौन से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, केवट ने भगवान राम की सेवा की है। तो भगवान के ये भागवत धर्म है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि आपको ये गुण होगा, ये गुण होगा। केवल एक गुण होना चाहिए और वो है इच्छा। आपकी इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। जो कुछ भी आप कर सकते हो, जो करना आता है, वो कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए, भागवत धर्म में जाता है। अब ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये नहीं कि किसी को मुर्गी काटना आता तो मुर्गी काट के भगवान को अर्पित करे, मतलब इट मेक्स सेंस कि नॉर्मल कार्य करने जो आते हैं, करोशी दशनाशी वाले श्लोक अप्लाई कर सकते हैं तो भगवान को हम समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए, बहुत आसान है। इसके बारे में मैं भक्त से पूछ रहा था, वृंदावन चंद्र प्रभु को, कि हम लोग ये कैसे समझें कि मनुष्य योनि में हम भक्ति अधिक कर सकते हैं, देवताओं के पास तो अधिक सामर्थ्य है। तो उन्हें समझाया कि देखिए, प्रायः स्त्री योनि अधम मानी जाती है, उनके पास बुद्धि नहीं होती, लेकिन भक्ति के लिए अधम नहीं मानी जाती। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि भक्ति में मुख्य क्या है, सेवा भावना, श्रद्धा, समर्पण, और उनके पास बहुत होता है। उसमें एक्चुअली भक्ति में बहुत ज्यादा बुद्धि की मतलब अपवित्र रहते हो जाती हैं, बुद्धि नहीं है होती उनके पास ज्यादा। आप अनुभव कर सकते हैं, भोग बुद्धि बहुत होती है, भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया, क्या करेंगे। ज्यादा दार्शनिक चिंतन नहीं कर पाती हैं, सुनने के बाद भी बहुत दार्शनिक चिंतन नहीं कर पाती। दार्शनिक चिंतन समझ रहे, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं, जनरली नहीं कर पाती। कुछ भक्ति करने के बाद उनकी चेतना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं करती। लेकिन सेवा भावना, समर्पण, ये सहज होता है। ऐसे ही हम लोग का शरीर एकदम, अगर मनुष्य को अगर देवताओं से कंपेयर करें तो एकदम अधम है, बुद्धि बहुत कम है हमारी। लेकिन भक्ति करने के लिए वातावरण बड़ा अनुकूल है, क्योंकि भोग की सामग्री नहीं है, उतनी नहीं है, और भोग करने की शक्ति भी नहीं। तो फिर जो है व्यक्ति बड़ी आसानी से भक्ति कर सकता है, और प्लस यहां पे भगवान के धाम तो है ही, जो भक्ति में हमको बहुत लाभ देते हैं। और एक बहुत एक अच्छी बात, बहुत पहले भक्त बता रहे थे, गुड़ाकेश को समझा रहे थे कि नम्रता हम बड़ी आसानी से विकसित कर सकते हैं। छोटा सा हमारा जीवन है, बुद्धि कम है, और कलयुग में तो और भी आसान है एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ी नम्रता की भावना अगर आ गई तो बड़ी आसानी से भगवान के धाम चले जाएंगे। और तो ये कहने का अर्थ यह है कि भागवत धर्म का आश्रय लेने के लिए व्यक्ति की कोई गुणों की अपेक्षा नहीं है। कौन सा गुण चाहिए, इच्छा। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, ये सेवा अगर इच्छा हो जाए तो आप किसी भी परिस्थिति में सेवा कर सकते हैं, और कोई लिमिटेशन नहीं। लास्ट लाइन देखेंगे, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है, तो जिस 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 वर्णाश्रम सेटिंग में है, अगर वो उसके अनुसार कार्य करता है तो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है, उसको जंप करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए ब्राह्मण के गुण नहीं है तो जबरदस्ती ब्राह्मण बनने का प्रयास ना करें। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, जारे देखो क्या स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवांग मनोफी, जहां पे भी आप हैं भगवान की कथा को सुनिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सुन ही सकते हैं, और जो आपका आपसे हो रहा है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आसानी से उसको करते रहें। ऑब्वियसली वो पापपूर्ण नहीं होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है, लेकिन उसके अनुसार व्यक्ति करता रहे और भगवान के धाम की प्राप्ति करे। एग्जाम्पल लास्ट आप उसको दूंगा, जैसे
सुदामा नाम के मालाकार ने भगवान को माला बना के दिया कृष्ण बलराम जी को, जब मथुरा पहली बार गए भगवान ने क्या बोला, तुमने माला दी है अब तुम इस जगत में जीवन में पूरे भौतिक रूप से खुश रहोगे और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति करोगे एक बार माला बनाने से, एक बार माला बना के भगवान को देने से। सो सिंपल, और कोई खास साधना उन्होंने नहीं किया। तो कृष्ण बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति है, कृतज्ञ आप लोग जानते हैं ना, मतलब जो व्यक्ति ग्रेटफुल है और जो भी वो सेवा करता है कोई उनकी, तो वो अनंत गुना रूप से वापस करते हैं। तो हम लोग कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो उस भक्त की तरह सेवा नहीं कर पा रहा हूं या उसकी तरह कर नहीं पा रहा हूं, वो भी कर पा रहा है क्योंकि भगवान उसे शक्ति दे रहे हैं। हमको जितनी भगवान ने शक्ति दी उससे हम पूरी तरह एंगेज होने का प्रयास करें। ठीक है, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग ललित प्रभु, एनी क्वेश्चन आर देयर विल टेक अप। कोई प्रश्न है, कोई डिस्कशंस?